الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. یہاں کے قیام میں ہمیں اپنے اوقات کو کس طرح گزارنا ہے اور یہاں کا جو نظام ہے اس کے مطابق کس طرح ہمیں اپنے آپ کو جوڑنا ہے یہ بات چل رہی تھی. جو اجتماعی اعمال ہیں پہلے بھی آپ کو اعلان میں بتلا دیا گیا ہے کہ اجتماعی اعمال میں شرکت کریں, اور جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ اجتماعی اعمال میں کچھ تو تعلیم کتب ہے, کتابوں کی تعلیم کا سلسلہ جو عصر بعد ہوتا ہے, تراویح کے بعد 10 منٹ کے لیے ہے, عصر بعد عصر سے لے کر مغرب سے کچھ پہلے تک, تو یہ کتاب جو پڑھی جاتی ہے. کل بھی بتلایا تھا کہ ہمارے بزرگوں کے ہاں جن سے یہ سلسلہ چلا ہے, جن کتابوں کو اس طرح ان مجالس کے اندر سنوانے کا پڑھوانے کا اہتمام تھا وہی کتابیں آپ کے سامنے پڑھوائی جا رہی ہیں. ان کو غور سے سنیں. بعض تو وہ مضامین ہیں جو بہت سہل اور آسان ہیں, فضائل کی کتابیں جو بکثرت ہم سنتے ہیں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ ایسی مجالس میں شریک ہونے کے بعد جس توجہ سے اور جس گویا انہماک کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ سننا چاہیے وہ بات ہم میں پائی نہیں جاتی. اس لیے بہت سی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات کبھی کہی جاتی ہے کہ یہ ہے کہاں ہے, کہ فلاں فضائل نماز کے اندر ہے, آپ تو روزانہ سنتے ہیں, کہاں کہاں فضائل نماز کھول کے بعد. اچھا, حالانکہ ہم روز سنتے ہیں. تو حقیقت تو یہ کہ جو توجہ ہونی چاہیے, ایک ایک لفظ کو توجہ سے سنا جائے. بزرگوں نے تو لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ اس طرح سنی جائے کہ 100 مرتبہ 100ویں مرتبہ بھی سن رہا ہے تو ایسی توجہ ہو جیسے پہلی مرتبہ کان میں پڑ رہی ہے بات. جیسے پہلی مرتبہ کوئی نئی بات ہم سنتے ہیں تو توجہ اور دھیان کے ساتھ سنتے ہیں, ایسے ہی یہ چیز بھلے بار بار سنی ہو, یہی اس کا ادب ہے اور اسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازا جاتا ہے. دیکھو, نوازنے والی ذات تو اللہ کی ہے اور اس نے اپنی نوازش کے اصول بتلا دیے ہیں, تو اب ان میں سے ایک یہ بھی ہے, اس لیے اس کا اہتمام. حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ان کے والد بزرگوار حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں ہیں, کبھی کوئی جماعت آ جاتی, میواتیوں کی جماعت ہے, اور وہ اپنی بات کر, حضرت इतने बड़े आलिम होने के बावजूद पूरी तवज्जो के साथ वो बातें सुनते थे, कभी भी जरा उन बातों की तरफ से बेतनाई, गफलत, अदम इल्तिफात का किसी को शायबा भी ना हो। इतना बड़ा आलिम और जो है एक देहाती की बात को जो दीन की निस्बत पर कही जा रही है तवज्जो से सुन रहा है। जब हम मजलिस में बैठे हैं तो उस मजलिस का हक यही है कि उसको तो अब मजलिस में बैठ करके इधर उधर ताकते झांकते रहना या दूसरी चीज़ों में मोबाइल खोल करके उसके अंदर मशगूल होना ये मुनासिब नहीं है। ये एक तरह की बेअदबी और गुस्ताखी है और उसके ऊपर बजाय अल्लाह तआला की तरफ से कुछ देने के हो सकता है कि गिरफ्त हो जाए। इसलिए मैंने कहा था, कल भी बतलाया था कि भाई हम तो यहाँ कुछ लेने के लिए आए हैं, कुछ खोकर जाना नहीं है। लेने गई थी पूत और खोआई खसम, क्योंकि इस एक औरत का बच्चा गुम हो गया था, तलाश करने के लिए गई तो बच्चा तो क्या लेकर के आती, शौहर को भी गुम करके आई, ऐसा हाल है। तो यहाँ हम लोग जो हैं कुछ लेने के लिए आए हैं तो वो लेकर तो क्या जाते, जो कुछ था वो भी खो करके जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये इज्तिमाई आमाल के अंदर ये तो ये किताबों की तालीम का सिलसिला है। एक ये है जो अभी इस वक्त आपके सामने है, फिर इसके बाद जो मजलिस होती है जिसमें मुज़ाकरा होता है ये कुछ मसाइल का, नमाजों का, इसको भी बहुत तवज्जो और जो है ध्यान से उसकी तरफ गया लगने की ज़रूरत है। जो अहले इल्म हैं उनसे तो क्या कहा जाए, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब रहमतुल्लाह अलैह दामत बरकातहू, अपना वालिद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब का मकूला नकल करते हैं कि हमें कुरान और हदीस पढ़ाते हुए और फतवे देते हुए 60 साल हो गए, उसके बावजूद नमाज के दौरान कभी ऐसी सूरत पेश आती है कि समझ में नहीं आता कि इसका क्या हुक्म होगा। नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद किताबें खोलकर देखते हैं तो पता चलता है। तो ये नमाज को मामूली ना समझो, नमाज के मसाइल को बयान करने के लिए फुकहा ने हज़ारों सफहात जो हैं सियाह किए हैं। तो हकीकत तो ये है कि इसको भी बड़ी तवज्जो से सीखना और उसका मुज़ाकरा करना बहुत सी मरतबा एक गलत चीज़ आदमी के इसमें बैठी। हमारे एक जो है हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे माशाल्लाह बड़े साहिब इस्तेदाद, एक मरतबा इसी तरह मुज़ाकरा हुआ था, कहने लगे कि ये मसला बचपन से मेरे जहन में इसी तरह गलत बैठा हुआ था, आज मेरी इसलाह हुई। तो हकीकत तो ये है कि इसलिए इन मुज़ाकरात की मजलिस में अहले इल्म को भी खूब ध्यान देना चाहिए और जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जो इन मसाइल से कमा हक़ो वाकिफ़ नहीं है उनको तो उसकी तरफ तवज्जो करना ही है। अल्लाह ने यहाँ हाजिरी का मौका दिया है तो कुरान की कुछ सूरतें और जो है इतनी ज़रूर याद कर ली जाए जो नमाज की दुरुस्तगी के लिए काफ़ी हो। ऐसा ना हो कि यहाँ इतना क़याम करने के बाद भी जब जाएँ तो जैसे आए थे वैसे ही गए, कुछ फ़ायदा हासिल करके नहीं गए। बुजुर्गों का मकूला है, बाज़ों ने तो उसको रिवायत भी जिक्र के तौर पर पेश किया है, मनीस्तवा यौमा हो फवा मकबून, कि जिस आदमी के 2 दिन यकसां और बराबर हों वो घाटे में है। यानी आज हमारे दीनी एतबार से हम जिस सतह और जिस लेवल पर थे कल भी वही सतह हमारी है, उसमें कुछ इजाफा नहीं हुआ, ज़रा ऊँचे नहीं गए, तो गोया हम घाटे में हैं। एक मोमिन के ईमान का तकाजा तो यह है कि वो अपने दीन के मामले में हर वक्त तरक्की करे, अमली एतबार से, इल्मी एतबार से, हर एतबार से। तो बहरहाल यहाँ ये जो ये हलके जो लगाए जाते हैं उनमें जिम्मेदारान को चाहिए कि अल्लाह ने इनको मौका दिया है, कोई कहाँ से आया है आपकी एक बात सीख करके जाएगा, ज़िंदगी पर अमल करेगा, दूसरों को बतलाएगा, ये कोई आपके लिए एक सदक़े जारिया होगा। अविल मुनतफ़ो बेही, जिन 3 चीज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की रिवायत में बयान किया है उनमें इसका ये हो जाएगा। तो बहरहाल ये हलके और नम कुरान को दुरुस्त करने का अहतमाम, जैसा कि उसके लिए ख़ास अलग जो नहीं जानते उनके लिए भी अलग हलके बनाए गए हैं, तो बहरहाल वो लोग भी उनके लिए जब इतना अहतमाम किया गया है तो उनको भी इसकी कदर करनी चाहिए और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इज्तिमाई आमाल में एक तो ये भी है, इज्तिमाई आमाल में रात को तरावी के बाद नमाजें तो जमात के साथ अदा की ही जाती हैं, तरावी भी, तो तरावी को भी बड़े शौक़ और रगबत के साथ अदा करने की ज़रूरत है। ये बेरगबती, बैठे रहना, या इस इंतजार में रहना कि इमाम या तरावी पढ़ाने वाला रुकू में जावे तो हम उठ करके नमाज में शरीक हों, नहीं। अगर खुदा न खास्ता आप थके हुए हैं, वाकईतन आप बीमार हैं, कमजोर हैं, तो भी शिरकत, तो इसलिए कि तरावी के अंदर कुरान पाक का सुनना जो सुन्नत करार दिया गया है वो एक लफ्ज भी छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए आप देखते होंगे कि हाफिज कोई चीज जब छूट जाती है तो उनको बतला दी जाती है, दूसरे दिन वो उसको पढ़ लेता है ताकि कुरान के अंदर तकमील के अंदर कोई एक लफ्ज की भी कमी न रहे। अब आप कसदन जो है नीयत नहीं बांधेंगे तो नतीजा ये होगा कि कुरान का बड़ा हिस्सा जो तरावी में आपको सुनना चाहिए था वो सुन नहीं पाएंगे और वो सुन्नत अदा नहीं होगी। तो अगर वाकईतन आप बीमार हैं, बूढ़े हैं, कमजोर हैं, शरीक हो जाए, बैठ करके पढ़ें, और अगर जवान हैं, कोई उज्र नहीं है, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम जो है अपने शौक को पूरा करने के लिए घंटों खड़े रहते हैं, बात करने के लिए खड़े रहेंगे आधा घंटा तो कभी पैर हिलता भी नहीं, और नमाज में 5 मिनट की तिलावत हो जाती है तो साइकिल चलाना शुरू कर देते हैं, ये पैर उठाया, वो पैर उठाया, किधर से उठा रहा है। ये तरीका जो है गफलत की बात है, अल्लाह ताला की तरफ से बेतवज्जुही की, तो अल्लाह के गजब को लाने वाली चीज है। हमें अपनी इस आदत की इसलाह करनी चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह मेरे कल्ब के अंदर जो है इसकी जो है रगबत, इसका शौक पैदा फरमा, और ये मेरे दिल मेरी तबीयत की कमजोरी की वजह से, ये हमारी बीमारी है। जैसे बुखार वाले को मीठी चीज भी कड़वी लगती है, तो ये अच्छी चीज, लेकिन हमें आज जो जी नहीं लगता वो दरअसल हमारी उन रूहानी बीमारियों की वजह से जिसके में हम गिरफ्तार हैं। इसलिए ये असल हमारी बीमारी का नतीजा है, खुद इसमें कोई कमी नहीं है। तो बहरहाल हमें कोशिश करके अपने आप को इसकी आदत डालनी चाहिए। जैसे एक बच्चा होता है आमाल का आदी नहीं होता, अपने बड़ों की निगरानी में और उनकी तरबियत में उनकी सख्ती की वजह से ज़बरदस्ती कराए जाते हैं ताकि वह आदत दुरुस्त हो, तो ऐसे हमें भी अपने नफ्स की इसलाह के लिए उसको जबरन इन आमाल का आदि बनाना है, उसके बगैर बात बनेगी नहीं। तो बहरहाल ये तरावीह को भी पूरे शौक और रगबत के साथ पढ़ने का अदा करने का अहतमाम करें, ये भी इज्तिमाई अमल है। तरावीह के ख़त्म होने के बाद जैसा कि ऐलान होता है सूरह यासीन, सूरह यासीन को ज़रूर पढ़िए, इतने दिन यहाँ रहेंगे तो जिनको ज़बानी याद नहीं उनको चाहिए कि ज़बानी याद भी कर लें, और ये तो एक ऐसी बहुत बड़ी दौलत है। आपने फ़ज़ाइल कुरान में जहाँ मखसूस आयतों और सूरतों के फ़ज़ाइल वाली फसल देखी सुनी होगी, उसमें सूरह यासीन की मुस्तकिल फजीलत, सुबह कोई आदमी पढ़ लेता है तो सारे दिन भर के कामों में अल्लाह ताला उसको कामयाबी अता फरमाते हैं, और भी उसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। इसलिए यहाँ आप रह रहे हैं तो सूरह यासीन को ज़बानी याद कर लेने का अहतमाम भी कीजिए, और ख़ाली उस वक्त तो नहीं बल्कि सुबह फजर की नमाज के बाद भी या सुबह सादिक के बाद भी उसको पढ़ने की यहीं से आदत डाल लीजिए, और रात का पढ़ा हुआ वो सुबह की जो है पढ़ने के लिए जो फजीलत आई है काफ़ी नहीं है। बहुत से रोज़मर्रा के पढ़ने वाले भी यहाँ इसी गफलत का शिकार होते हैं कि सुबह को वो नमाज के बाद जो है बिस्तर फैला कर सो जाते हैं, सूरह यासीन की जो रोज़ाना की आदत है मामूल है वो अदा नहीं हो पाता, ये नहीं उसको तो अदा करना ही। तो बहरहाल यहाँ से आपको कुछ चीज़ें ले करके जाना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे आमाल को दाखिल करना है, कुछ जो है ज़िंदगी में तब्दीली लानी है, अल्लाह के नेक बंदों वाली शक्लें, उनके वह आमाल, उनके जो है उनका आमाल का जो अहतमाम है, तो अपने अंदर भी इसको पैदा करने के लिए ये सूरह यासीन याद कर लें, और तय कर लें कि यहाँ से जाने के बाद भी रोज़ाना मैं सुबह सादिक सुबह को सूरह यासीन की तिलावत करूँगा, उसकी आदत बना लीजिए। इसी तरह सूरह मुल्क जो है तबारक अल्लज़ी रात को पढ़ने का अहतमाम किया जाए। तो बहरहाल खैर ये तो सूरह यासीन हमारे यहाँ तो इस जो पढ़वाई जाती है तरावी के बाद वो तो वो दुआ की मुनासबत से, कि बाद बुजुर्गों का तजर्बा है कि 40 मरतबा सूरह यासीन पढ़ करके जो दुआ की जाती है वो कबूल होती है। माशाल्लाह सब पढ़ेंगे तो 40 का 400 और 800 मरतबा हो जाएगी, कई गुना हो जाती है। तो बहरहाल सब इसके पढ़ने का अहतमाम करें, उस वक्त किसी दूसरी चीज़ में मशगूल न हो। उसके बाद फिर सलात व सलाम पढ़ी जाती है, उसको तवज्जो से सुनना चाहिए, और हमारे हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तो बाद मरतबा ताकीद की जाती है کہ پڑھنے والا جب پڑھ رہا ہے ایک درود مکمل ہوا تو آپ اس پر آمین کہیے, اس لیے کہ یہ درود ایک دعا ہے, آپ جب آمین کہیں گے تو اس میں آپ بھی شریک ہو گئے, خالی سنا نہیں بلکہ آمین کہہ کر کے پڑھنے والے کی طرح آپ بھی پورے طور پر اس میں برابر کے شریک قرار دیے جائیں گے. اور ویسے بھی یہ 40 درود والا عمل جو ہے بابرکت عمل ہے, آپ اس کو بھی یہاں سے لے کر کے جائیے, یعنی اس طرح کہ اب یہ تو سننا ہے لیکن سننے کے علاوہ روزانہ 40 درود پڑھنے کی بھی عادت ایسی ڈالیے کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی روزانہ آپ دن یا رات کے کسی مقررہ حصے میں ان درودوں کے پڑھنے کا اہتمام. آپ نے سنی ہوگی ابھی گزشتہ جو ہے گزرے ہوئے عشروں کے اندر جو کتابیں سنائی گئی اس میں یہ آخر میں فضائل درود سنائی گئی تھی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے میرے اوپر درود بھیجو. ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو احسانات تھے امت پر اور آپ کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا اس کا تقاضا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاکید نبی فرماتے تو اب ایک امتی کی حیثیت سے اور ایک احسان مند اور ممنون ہونے کی حیثیت سے ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تھا, چہ جائے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی فرمائی کہ مجھ پر درود بھیجو. اور پھر یہ ہے کہ آپ پر درود بھیجنا یہ ہمارے فائدے سے خالی نہیں, من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ اشرن او کما قال, کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں. کیسی عجیب و غریب ہے اللہ کا کیسا انعام کہ آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کے نتیجے میں 10 رحمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں. تو بھئی ایسا فائدہ تو کون نہیں اٹھائے گا, ایک کے بدلے میں 10 ملتا ہو تو لوگ دوڑے ہوئے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ ایک بھی ہمارا دیا ہوا ہم, اور اللہ وہ 10 جو ملتا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ملتا ہے, وہ کمن کا کیفیت کے اعتبار سے بھی جو ہے ہمارا وہ عمل اللہ کی اس رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو بہرحال اس درود کو یہاں سے پڑھنے کی عادت ڈالیں گے نا, یہاں سے جانے کے بعد بھی روزانہ پڑھنے کی عادت ایسی کہ بس وہ وقت آوے اور اس کو پڑھے بغیر آپ کو چین نہ ہو. دیکھو اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کیسا سکون عطا فرمائیں گے اور کیسی برکتیں آپ کو حاصل ہوگی. اور پھر دعا, دعا میں تو سب شریک ہوتے ہی ہیں لیکن دعا کو بھی عبادت سمجھ کر شرکت کی جائے, خالی یہ جو اجتماعی دعا ہے اس اجتماعی دعا ہی میں شرکت نہیں بلکہ انفرادی طور پر بھی دعائیں مانگنے کا اہتمام کیا جائے. یہ دعا جو عربی کے اندر ہے, جو عربی نہیں جانتے خیر وہ معذور ہیں, لیکن جو اردو میں جو کی جاتی ہے اردو میں کی جانے والی یہ دعائیں بھی عام طور پر وہ ہیں جو عربی کی دعاؤں ہی سے لی گئی ہیں, تو ان کے الفاظ کو بھی یاد کرنے کی کوشش کیجیے اور اس طرح گویا دعا سیکھ کر کے یہاں سے جائیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں دعا کرنا چاہتے ہیں لیکن جو ہے آتی نہیں ہے, تو اب وہ کسی کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ حضرت دعا کر دیجئے میرے لیے. ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ حضرت مولانا سید خلیل حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں تھے, مرحوم ہو گئے وہ ابھی قریب زمانے کے اندر, اخیر میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے. وہ کہ ہمارے ساتھی کہنے لگے کہ حضرت کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, ایک آدمی نے آ کر کے حضرت سے کہا حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے. ٹھیک, وہ ظہر میں آیا, پھر عصر میں پھر آ کر کے کہتا ہے, پھر مغرب میں آ کر کے کہتا ہے. تو حضرت نے کہا بھائی میں ہی کروں گا, تو بھی کچھ کرے گا یا نہیں, تو دوسروں سے ہی دعا کرواتے رہیں یا خود بھی کچھ مانگنا ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن کے اندر. تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے, دعاؤں کا اپنے آپ کو عادی, اور دعاؤں میں بھی خالی خود غرضی نہیں, یعنی خالی اپنی حاجتیں مانگ لی یہ نہیں, بلکہ گویا دعا میں ایک تو اپنی حاجتیں مانگنی ہے, پھر اپنی حاجتیں ہر آدمی جانتا ہے, جیسے ہماری اپنی ذاتی حاجتیں ہیں ایسے ہمارے جو رشتہ دار ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہمارے چچا, ہمارے خالو, ہمارے ماموں, ہماری خالائیں اور دوسرے اعزاء اور اقارب, ان کی بھی اسی طرح کی حاجتیں ہیں جو ہمارے علم میں ہیں, ان کا کوئی قریبی رشتہ دار بیٹا بیٹی بیمار ہے, کسی کی شادی ہے, کوئی پریشان ہے, آپ کے علم میں ہے, تو وہ آپ کو کہیں یا نہ کہیں آپ کو ان کے لیے ان کی اس رشتہ داری اور تعلق کا حق ہے کہ آپ ان کے لیے کیا کریں, دعا کریں. ویسے بھی عموماً کہتے ہیں جب آپ یہاں آئے ہیں ان کو پتا چلے گا اور آپ کے ساتھ تھوڑا بہت اگر ربط ہے تو وہ ضرور چلتے ہوئے اگر ملاقات کی نوبت آئی تھی یا فون کی نوبت آئے گی تو وہ کہیں گے ذرا ہمارے لیے دعا کر دینا, دعا ضرور کرنا. اور آپ کہ ہاں کریں گے, اپنے لیے ہی ہم نہیں کرتے, ان کے لیے کہاں کریں, یہ نہیں. دعا ایک ایسی چیز ہے جہاں کوئی تدبیر اثر نہیں کرتی, ساری تدبیریں جہاں جواب دے جاتی ہیں وہاں دعا اپنا اثر کرتی ہے. تو ایک ایسا عمل کہ جہاں دنیا کی کوئی تدبیر کارآمد نہ ہو وہ اگر کارآمد ہے تو اس سے بڑھ کر کے بڑا ہتھیار اور کیا ہو سکتا ہے. تو یہ تو گویا اسی لیے دعا مخ العبادہ کہا گیا. مخ العبادہ بھائی اس معنی کر کے بھی ہے کہ عبادت کے اندر اصل یہ ہے کہ آدمی کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو. آدمی جب عام طور پر اپنی غرض کے لیے دعا کرتا ہے تو دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہی ہے. تو جو التفات توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے نماز میں عبادت کے اندر تو وہ دعا میں پائی جاتی ہے. اور دعا کو آپ جو ہیں بہت سو کو غلط فہمی ہوتی ہے, بات کہتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت تسبیح وغیرہ, تو ہر ایک کے اوقات مقرر کر دیجئے, دعا کا بھی ایک وقت ہونا چاہیے. بات یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں اگر دعا کرنے جاؤں گا تو میری تسبیح رہ جائے گی, میری نماز رہ جائے گی. ارے بھائی جس طرح تسبیح اور نماز ایک عبادت ہے اسی طریقے سے دعا بھی عبادت ہے. آپ دعا کو الگ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ آپ ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں کہ دعا آپ کریں گے تو اس کی وجہ سے میں فلاں عبادت سے کٹ جاؤں؟ نہیں, دعا خود بھی ایک عبادت ہے. اور یہ تو ہم خرما و ہم ثواب کہ ہم گویا عبادت بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے. تو بہرحال تو اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, اپنا جو حلقہ احباب ہے نا ان کے لیے بھی, ہمارے دوست جو ہوتے ہیں ان کی بھی حاجت, جیسے ہماری حاجتیں ہیں ہم ان سے واقف ہوتے ہیں کہ ہمارے فلانے دوست کی فلانی پریشانی ہے, باتوں میں ہمیں معلوم ہوتا ہے, اس نے ہمیں کہا ہو یا نہ کہا ہو ہم اس کے لیے دعاؤں کا, اس کا حق ہے, دوستی کا اس حق یہ ہے کہ ہم اس کے لیے, وہ کہے تو اور لازم ہو جاتا ہے, نہ کہے تو بھی نفس دوستی کی وجہ سے اس کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اور چوتھا پوری امت محمدیہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اور جو محبت ہے اس کا تقاضا ہے کہ آپ کی امت کے اوپر کوئی پریشانی ہو, کوئی حالات ہوں تو ہم اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام, کہیں سیلاب آتا ہے, کہیں فساد ہوتا ہے, کہیں اور حادثہ پیش آتا ہے اور مسلمان اس حادثے کا شکار ہو کر بے گھر ہو جاتے ہیں یا اور پریشانیاں, تو ہم مدد کے لیے جو ہے باقاعدہ کمیٹیاں بنائی جاتی ہے, ریلیف کا کام ہوتا ہے, لوگوں سے چندہ کر کے ان کو مدد پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو جو مدد اس طرح ایک یہ بھی ہے, آپ دو پیسے نہ دیں تو کم سے کم جو ہے دعاؤں کا, بلکہ یہ تو اس سے بڑا یہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تیرا یہ بندہ جو اس فساد کا شکار ہو کر برباد ہو گیا, سیلاب کی وجہ سے اس کا گھر جو ہے بہہ گیا ہے یا اور دشمنوں کے حملے کی وجہ سے اس کو یہ تکلیف ہوئی ہے تو اس کی تلافی فرما دے, تو ہمارے حق میں عبادت ہی ہو جائے گی اور اس کے حق میں دعا. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بحیثیت ایک امتی کے جو ہمارا تعلق ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ حق ادا ہوگا. یہ چار قسم کی دعاؤں کے لیے بھی 24 گھنٹے میں آپ کو یہاں رہ کر عادت ڈال کر بعد میں اپنے لیے اس کا وقت نکالنا چاہیے. اور یہ تو ایک عجیب و غریب نسخہ ہے, حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے جب غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں اور والا کا مثلہ, کہ اللہ اس کی دعا قبول فرما اور اس کو بھی یہی نعمت عطا فرما. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کبھی کبھار کہ بھئی ہماری جو اپنی حاجت ہوتی ہے تو اس وقت میں تو یہ کرتا ہوں کہ میرے احباب اور متعلقین میں ایسی جس کی حاجت ہوتی ہے ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتا ہوں تاکہ فرشتے اس پر آمین بھی کہیں اور ہماری حاجت کے لیے وہ بھی, ہم مقروض ہیں تو اپنے مقروض دوستوں کے لیے دعا کا اہتمام کریں تو دعا فرشتے آمین بھی کہیں گے کہ اللہ اس کے بھائی قرض کو ادا کروا دے. تو بہرحال ایک تجربے کی بات کہہ دوں آپ کو کہ آپ کی دعائیں اس کے نتیجے میں قبول ہوں گی, आप मुस्तजाब दुआ यानी ऐसा शख्स जिसकी दुआएं अल्लाह के यहाँ कबूल हो उसके एक तरीका ये भी है कि आदमी जो है ये दूसरों के लिए दुआओं का खास करके पूरी उम्मत के लिए अपने अहबाब के लिए रिश्तेदारों के लिए अपनी जात के लिए तो करते ही हैं उनके लिए करने का अहतमाम करेंगे तो उसकी बरकत से आपकी दूसरी दुआएं भी कबूल होंगी क्योंकि फरिश्ते जब आमीन कहेंगे तो फरिश्तों की आमीन के बाद उसके कबूल होने में क्या तरद्दुद हो सकता है। तो बहरहाल इस दुआ का अहतमाम करें और उसका दूसरा फायदा ये होगा कि वो उनके दिलों में भी अल्लाह ताला आपके लिए दुआ का जज्बा डालेंगे। आप अपने रिश्तेदार के लिए भाई के लिए अपने दोस्त के लिए दुआ देखो अभी कोई दोस्त आके आपको ये नहीं कहेगा कि मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। तजर्बा करके देख लो आप अपने उन दोस्तों का नाम लेकर उन अहबाब के लिए दुआ का एहतमाम करें तो कुछ दिनों के बाद जब उनकी मुलाकात होगी तो वो आपको यूँ कहेंगे मैं आपके लिए दुआ करता हूँ नाम लेकर दुआ करता हूँ। ये उसके दिल में आपके लिए दुआ का जज्बा किसने डाला? अल्लाह ने डाला। क्यों डाला? क्योंकि आपने उसके लिए दुआ का एहतमाम किया। तो एक आपका दोस्त बीमार है अस्पताल में दाखिल है तो वो आपसे उम्मीद रखता है भले उस वो समझता है कि मेरे दोस्तों को जब पता चलेगा कि ये बीमार है तो जरूर मेरे लिए दुआ करेगा और हम जानने के बावजूद दुआ का एहतमाम न करें तो गोया जो तवक्कु उसने हमसे रखी थी उस तवक्कु में हम पूरे नहीं उतरे। तो हकीकत तो यह है कि इसका फायदा ये होगा कि अल्लाह ताला उन लोगों के दिलों में भी आपके लिए दुआ के जज्बात को पैदा फरमाएंगे और फायदा दोहरा हो जाएगा आपका। इसलिए यहाँ रहकर भी जो दुआएं करें इनफरादी तौर पर अपने खानगी में उसमें भी इन चीज़ों का खास तौर पर एहतमाम होना चाहिए और जिन्होंने दरख्वास्तें की है उनका तो खास तौर पर नाम के साथ कम से कम एक मर्तबा तो ज़रूर उसके नाम के साथ दुआ होनी चाहिए। नाम अगर याद नहीं रहा तो जहन में है उसके मुताबिक अल्लाह से दुआ कर लें ताकि उसकी उस दरख्वास्त का हक अदा हो जाए। तो बहरहाल कहने का हासिल यह है कि बाद हमारे बुजुर्गों को तो देखा कि उनसे जब कोई दरख्वास्त खास करके पाकिस्तानी अकाबिर जो हरामैन में आते हैं उनकी मुलाकात के मौके पर उनसे दुआ के लिए कहते हैं तो वो फौरन हाथ उठा देते उसी वक्त हाथ उठा के दुआ चालू कर देते हैं पाँच मिनट में दुआ करें गोया वो नकद ही आपकी उस दरख्वास्त का क्या करते हैं जवाब देते हैं। बाद में याद रहे के ना रहे हम तो उधार रखते हैं बाद में फिर याद नहीं रहा तो ये हमारी दरख्वास्त हमारे सर पर जो है कर्जा बाकी रहेगा वो लोग कर्जा बाकी नहीं रखते। तो बहरहाल कहने का हासिल ये है कि दुआओं का यहाँ रहकर जो दुआएं तो ये जो दुआ उमूमी दुआ की जाती है उनके अल्फाज को भी जरा जो खास करके वो लोग जो दुआ के तरीके से नावाकिफ हैं उसका उसको याद रखें। देखो दुआ में पहला ये कि अल्लाह की हमदो सना की जाए तो अल्लाह की हमदो सना में क्या बात सुनते कहाँ मुझे तो कहाँ अरबी आती है। अरे भाई आपको तीसरा कलमा तो आता है ना चौथा कलमा आता है सना आती है जो है आयतुल कुर्सी आती है ये सारी अल्लाह की हमदो सना ही है पहले ये पढ़ लो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद दुरूद के जितने भी सेगे आपको याद हो वो पढ़ लो ये दोनों चीजें वो हैं तो दुआ को कबूलियत से करीब करने वाली उसके बाद अपनी दुआ शुरू करो आखिर में भी दुरूद वगैरह पढ़ करके उसको इख्तिताम तक पहुंचाना है। तो बाहर ये आदाब जो दुआ के हैं आम आदाब जो अहम हैं वो यही हैं। तो यहाँ रह करके ये जो आम दुआएं कही की जाती हैं उनके अल्फाज को याद करके खुद दुआ सीख लो। मैं हमेशा कहा करता हूँ बैत होने वालों को बैत के वक्त कि भाई ये जो मांगने वाले फकीर आते हैं मोहल्ले में वो जब आवाज़ लगाते हैं ना तो उनकी कैसेटें भी बाकायदा तयशुदा हैं किसी मोहल्ले में जाएंगे तो एक क्या क्या मांगना है वो बाकायदा एक चल रही है बनी बनाई कैसेट है उसके जहन के अंदर वो चलती है हाजी साहब आपका यूँ भला हो जाएगा और यूँ करो ने फलाना करो। गोया इन फकीरों ने तो अल्लाह आपसे यानी बंदों से मांगने का तरीका सीख लिया और हमने अल्लाह से मांगने का तरीका नहीं सीखा। अहले इल्म से तो खास तौर पर के कहूँगा कि ये जो हिजबुल आजम के अंदर दुआएं हैं हमारी जाती हाजतें भी ऐसे अंदाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांग कर बतलाई हैं कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो आपने अपनी हाजत के मुताबिक उसको याद करके उसको मांगते रहना चाहिए। बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होती हैं और जो है आदमी के आज़ा मैं जैसे भाई एक एक मौलाना हमारे हैं हजरत मुफ्ती रजाउल हक साहब दामद बरकात हम दारुल जकरिया के जो मुफ्ती हैं उनसे मुलाकात होती है। ग्लूकोमा का मर्ज है, काला पानी मुझे भी है उनको भी है। अब ग्लूकोमा के मुतालिक जो है वो डॉक्टर लोग कहते हैं कि इसका कोई खास इलाज नहीं है, जो दवाइयाँ लिखी दी जाती है वो दवा बहुत बहुत तो ये है कि उस बीमारी को आगे बढ़ने से रोकती है, आगे फिर कुछ नहीं। तो बहरहाल अब मैं भी अब दवाइयाँ तो डालता रहता हूँ। तो हजरत से एक मरतबा उनकी आँख एक आँख ज्यादा मुतासर हो गई। मैंने कहा हजरत मैंने तो इसके लिए वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अल्लाहुम्मा मत्तिना बि अस्माइना व अबसारिना व कुव्वतिना मा अहयैतना अल्लाहुम्मा जअलहुल वारिसा मिन्ना, कि अल्लाह तो हमें अपनी कुव्वत समाअत सुनने की सलाहियत, देखने की सलाहियत और हमारी दूसरी जितनी भी सलाहियतें तूने रखी हैं उनसे फ़ायदा उठाने का मौका अता फरमा। वजअलहुल वारिसा मिन्ना, अल्लाह ये सलाहियतें अखीर तक बाकी रहें और वो हमारी वारिस बने, यानी हम दुनिया से जावें और वो हमारे पीछे बाकी रहनी चाहिए गोया आखिर तक ये सलाह। मैंने कहा मैं तो इसी नीयत से ये दुआ पढ़ लेता हूँ। तो बहरहाल कहने का हासिल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं ऐसी अजीब व गरीब हैं कि हम उनके फवाइद का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये हिजबुल आज़म जो है उसमें से ऐसी दुआएँ अरबी में याद न रहे तो उर्दू में उसका तर्जमा याद करके उनका अहतमाम किया जाए। तो बहरहाल ये दुआ तो यहाँ की दुआ में तो शरीक होते ही हैं। बाकी ऐसा कि भाई अब यहाँ से चले गए तो आप दुआ की तरफ से बिल्कुल कट गए, बेकार हो गए। अब आप यूँ सत्य में किससे कहूँ दुआ के लिए? मैंने कहा ना यहाँ रह करके कुछ सीख लेंगे तो उस सूरत में खुद ही अल्लाह तबरक तआला के साथ जो है आपका राबता हो जाएगा। और ये एक ऐसी नेमत है कि जिसका जो है वो कोई और वो दूसरी नेमत मुकाबला नहीं कर सकती। बकौल हजरत शाह वसीला साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक औरत जो थी उसके यहाँ मुर्गी थी और दूसरी उसकी पड़ोसन थी, उसके यहाँ मुर्गी नहीं थी। कोई मेहमान अचानक आ जाता था तो वो पड़ोसन जो है वो मुर्गी वाली पड़ोसन से यूँ कहती थी, बहन एक अंडा दे दो ना, अचानक मेहमान आ गया है तो उसको गया उसके लिए कुछ तैयारी करनी है। तो जब भी ऐसा होता बार बार वो तो पड़ोसन ने एक मरतबा यूँ कहा, बहन क्या जब भी मेहमान आता है अंडा मांगने के लिए आती हो, तुम भी एक मुर्गी पाल लो ना। समझाया कि नहीं? तो हमें भी जो है कोई परेशानी होती है उनसे कहो खुद ही अल्लाह तआला के साथ दुआ का रिश्ता ऐसा कायम कर लो कि हम अल्लाह से दुआ और दुआ के हुजूर अल्लाह से दुआ मांगने में बाद यूं समझते हैं कि मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, मेरी दुआ कहाँ कबूल होगी। अरे अल्लाह ताला ने तो शैतान की दुआ कबूल फरमाई और शैतान की दुआ भी अजीब गरीब। आप सुन कुरान में वाकया मौजूद है, ऐन उस वक्त जबकि उसने अल्लाह ताला के हुक्म को तोड़ा और अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह से निकाल रहे हैं, मरदूद कर रहे हैं, उस वक्त उसने अपनी डिमांड रखी कि मुझे जो है जब तक कि कायनात और दुनिया कायम रहे वहां तक जो है रहने का, जिंदा रहने का मौका दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने उसकी उस दुआ को कबूल कर लिया। दरअसल क्या है, शैतान अल्लाह ताला की सिफात से जितना वाकिफ था, मारिफत अल्लाह की उसको जितनी हासिल है, बकौल हजरत हकीमुल उम्मत नवरल्लाह मरकदहू के, वो इल्म में भी कामिल है, मारिफत में भी कामिल और अमल भी बहुत किया, अलबत्ता जो है इश्क में कमी थी। तो बहरहाल मारिफत उसकी इतनी कामिल थी कि वो जानता था कि अल्लाह तबरक तआला के अंदर इन्फियाल नहीं है। एक इन्फियाल होता है, कोई आदमी हमारे साथ कोई सुलूक करे उस सुलूक के नतीजे में हमारी तबीयत के ऊपर जो असर मुरतब होता है उस असर की वजह से हम मामला, उस किसी ने हमको गाली दी, गाली सुनकर हमको गुस्सा आ गया और गुस्से में हमने तमाचा मार दिया या तमाचा नहीं मारा, बर्दाश्त कर लिया लेकिन कुछ देने वाले थे वो नहीं दिया। तो ये इन्फियाली कैफियत जो है वो इंसान में है। अल्लाह तबरक तआला इन्फियालात से पाक है, वो किसी भी इसी चीज का कोई असर अल्लाह की जात पर नहीं। अल्लाह ताला तो अपनी कुदरत से और अपने इल्म से फैसले करते हैं। तो शैतान को अल्लाह तबरक तआला की इतनी मारिफत हासिल थी कि वो जानता था ऐन उस वक्त जबकि अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह से निकाल रहे हैं। बीवी भी अपने शौहर से कुछ डिमांड करना चाहे तो वो उसका मूड देखेगी, क्या शमिया का मूड अगर अच्छा है तो, और कितना ही लाडला बेटा हो और अपने बाप से कोई दरखास्त करना चाहता है, कुछ मांगना चाहता है तो वो भी अब्बा का मूड देख करके अपनी डिमांड पेश करेगा, देखता है इधर आज अब्बा मजे में हैं और खुश हैं, अब्बा ये चीज की जरूरत है। गुस्से में हो अब्बा तो उस पर गुस्सा कर रहा हूं या किसी दूसरे पर गुस्सा कर रहा हूं, कभी भी वो अपनी बात उनके सामने पेश, वो जानता है कि इस गुस्से की वजह से मेरी दरखास्त हो सकता है क्या। ये इंफियाली कैफियत, तो ये इंसान की खासियत है। अल्लाह तबरक तआला इंफियाल से पाक है, तो शैतान को अल्लाह की इतनी मारिफत हासिल थी कि वो जानता था कि अल्लाह तबरक तआला इंफियाल से पाक है, तो ऐन उस वक्त जब अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह से मर्दूद कर रहे हैं, वो दरखास्त कर रहा है, दुआ कर रहा है, अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल कर दिया। तो मैं तो ये बतलाना चाहता हूँ, कोई कितना ही गुनहगार हो ये न समझे कि मैं तो इतना गुनहगार हूँ, क्या मेरा मुंह में क्या अल्लाह से मांगू, नहीं, बल्कि अल्लाह तो हर एक की दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने दुआ फरमाने का हुक्म भी दिया है, इसलिए दुआओं का अहतमाम करना चाहिए। और ये एक ऐसी चीज है, ऐसी नेमत है, और ऐसा गोया आपके पास ऐसा अजीब व गरीब नुस्खा है कि कोई और चीज वो ऐसा काम कर सकती। मैंने कहा नहीं, सारी तदबीरें जहां फेल हो जाती, बल्कि तदबीरें फेल होने के बाद इसका क्या होता है, सिलसिला शुरू, इसका काम बाद में शुरू होता है। सब लोग दवा करा के आ रहे, फिर जाते हैं साहब दवा बहुत करे, अब तो दुआ कर दो। तो बहरहाल इसलिए हम अगर पहले ही से इस हथियार को अपना लें तो फिर क्या कहना, नूर उल्लाह नूर। बहरहाल मैं तो ये अर्ज करना चाहता था कि यहाँ आए हैं आप, तशरीफ लाए हैं, यहाँ ये दुआएं भी हो रही हैं, इन दुआओं की वजह से आप भी अपना मिजाज दुआ वाला बना करके जाइए, दुआएं सीख करके जाइए। ये इज्तिमाई अमल की बात थी, और दुआ के बाद 15 मिनट के बाद फिर जो है इज्तिमाई अमल में फिर इन इज्तिमा सुबह खाने पीने की चीजें आमाल जो है वो भी एक इज्तिमाई आमाल है, उसके अंदर भी कल मैं बतला चुका हूँ कि इंतजाम का लिहाज करते हुए आप उसके अंदर शिरकत करें, उसकी तदबीरें सब तफसील आ चुकी है कल। और इनफिरादी आमाल के अंदर जो है हमें कुरान पाक की तिलावत का खूब एहतमाम करना है। वैसे तो तमाम नेकियां बहुत आला, हर नेकी अपनी अपनी जगह पर अपना एक असर रखती है। जैसे खाने की मुख्तलिफ जो अनवा और अकसाम होती है ना, आइटमें अलग अलग होती है, हर आइटम अपनी जगह पर अपना एक जायका रखती है। दुआ का अपना एक असर है, जिक्र का अपना एक असर है, कुरान की तिलावत का अपना एक असर है, हर चीज का अपना अपना एक ये है इबादत होने की हैसियत से। लेकिन कुरान की तिलावत को तमाम अज़कार के ऊपर फजीलत हासिल है, और कुरान के जरिए से आदमी अल्लाह सुब्हान तआला का जितना क़ुर्ब हासिल कर सकता है किसी और चीज़ से उतना नहीं। हज़रत इमाम मोहम्मद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह तबरक तआला को ख्वाब में देखा 100 मरतबा, 100वीं मरतबा जब देखा तो उन्होंने अल्लाह तबरक तआला से पूछा, बारी तआला आपका क़ुर्ब सबसे ज्यादा किस चीज के जरिए से हासिल किया जा सकता है। तो कहा वो चीज जो मेरे अंदर से निकली, यानी मेरा कलाम कुरान। तो कहा समझकर, बेफहमी ना हो बगैर फहमी, समझकर या बगैर समझे। बारी तआला ने फरमाया बेफहमी ना हो बगैर फहमी, चाहे समझ कर हो या बगैर समझे हो। बहरहाल हर बाहर सूरत कुरान की वजह से उसकी तिलावत से अल्लाह, अलबत्ता उसके जो आदाब हैं फजाइल कुरान में आपने सुने होंगे, उन आदाब का लिहाज करना चाहिए, और हुरूफ की तसीह का अहतमाम, अवकाफ की रियायत, और इश्बाए हरकात हरकतें भी अच्छी तरह, मद और जो है तशदीद का ये तरतील के साथ पढ़ने का कुरान में हुक्म दिया है। जहरन पढ़े, दर्द भरी आवाज़ के साथ पढ़े। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब देहलवी रहमतुल्लाह के फतुल अजीज के हवाले से हजरत शेख ने फजाइल कुरान के अंदर तरतील के साथ ये बतलाए हैं। तो बहरहाल उसका अहतमाम किया जाए अदब के साथ, तो इंशाल्लाह उसके फवाइद। और अल्लाह के कलाम को रमज़ान के साथ बड़ी मुनासबत है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान रमज़ान में उतारा गया, यानी मजमूई कुरान जो लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर उतारा गया था वो रमज़ान में शब कद्र में, और दूसरी आसमानी किताबें भी तौरात जो है वो 6 रमज़ान को उतरी, और जो है इंजील वो 12 या 18 को, नहीं जबूर 12 या 18 को उतारी गई, और इंजील जो है 12 या 13 को हजरत इब्राहिम अल्लाह नबीना वाली मुसरात वसलाम के सहीफे जो हैं वो 1 या 3 रमज़ान को उतारे गए। तो अल्लाह के तमाम कलाम को जो है रमज़ान के महीने के साथ खास मुनासबत है, इसलिए हमारे अकाबिर भी रमजान के अंदर जिस इबादत का ज्यादा एहतमाम करते थे वो कुरान पाक की तिलावत है, इसलिए उसका एहतमाम रातों को नफलों के अंदर, जैसा कि मैं कल अर्ज कर चुका हूँ, हफाज को चाहिए कि दूसरों को जरा जो है तरगीब दे करके शौक दिलाकर दो, एक एक हाफिज के साथ दो दो या तीन, उससे ज्यादा ना हो, इस तरह अगर करेंगे तो इंशाल्लाह ये मुबारक रातें भी वसूल हो जाएगी और कुरान की तिलावत, और कुरान की तिलावत की आदत आप डाल लीजिए। मैं ये कहने का मतलब है कि ये चीजें यहाँ से सीख करके जहाँ, ऐसा नहीं कि 10 दिन के लिए आए बस किया और फिर छुट्टी हो गई साल भर के लिए, नहीं, बल्कि ये वो आमाल हैं कि गोया इन आमाल के इन तोहफों को आप यहाँ से लेकर के जाएं। कोई पूछे आपसे कि भाई आप चहल दुरूद पढ़ते हैं 40 दुरूद, कहा मैं जब से मैंने रमजान के लिए वहां गया था वहां से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से वो आमाल हैं तो हम पहले नहीं करते थे, जब शेख रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिरी की सआदत मिली सब वो सारे आमाल जो शुरू किए अल्हम्दुलिल्लाह अब 50 साल हो गए हैं लेकिन फिर उनमें कभी नागा नहीं हुआ। अल्लाह उन बुजुर्गों की सोहबत और उनकी तवज्जुहात की बरकत से अल्लाह ताला वो आमाल अदा करवाते हैं, तो असल तो यही है। तो बहरहाल कुरान की तिलावत की आदत, कुरान नमाज का रमजान में तो ज्यादा मिकदार में होगा लेकिन रमजान के अलावा बहरहाल हुफाज हैं वो अपने हाफिज होने की वजह से हमारे अकाबी कम से कम 3 पारे, ज्यादा अगर पूरी मंजिल हो जैसा कि हजरत साहबा का मामूल था तो नूरुन अला नूर साहबा 7 दिन के अंदर कुरान खत्म किया करते थे, आम मामूल उनका यही था, फमी बेशौक, जैसा कि आपने जो है फजाइले कुरान के अंदर सुना होगा, और आमी जिसको दूसरा नाजरा पढ़ने वाला कम से कम 1 पारा, और अगर आलिम दीन है अच्छा पढ़ता है तो वो भी ज्यादा कुरान पढ़ने का अहतमाम करे, और जिसको नहीं आता वो भी कुरान सीखे, यहाँ अल्लाह ने मौका दिया यहाँ से जाने के बाद भी उस सिलसिले को बाकी रखे, नेक अमल सीखने का शुरू सिलसिला शुरू किया है उस सिलसिले को बाकी। हमारे अकाबिर के यहाँ इसका कितना ज्यादा अहतमाम था, हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर वो जो हुकूमत की तरफ से जिहाद शामिली के बाद जो कुछ इल्ज़ाम आया था और उसकी वजह से आप जेल में रहे, तो जेल में रहने के जमाने में एक आदमी वहाँ, वो भी देहाती आदमी था, जेल के अंदर था, उसको कुरान हजरत सिखलाते थे। अब हजरत का केस चल रहा था, केस में हजरत की बरात हो गई यानी बेगुनाह साबित हुए तो आपकी रिहाई का हुक्म आ गया, तो वो देहाती कहता हजरत आप तो अब चले जाएंगे, मैं कहा नहीं, जब तक तू कुरान सीख नहीं लेगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा, सिखाने वाला ये कहता। हमारे अकाबिर के यहाँ कितना ज्यादा एहतमाम था इन चीजों का, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बहरहाल मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे अहबाब आए हुए हैं कुरान की तिलावत और जो सीख रहे हैं वो भी आगे यहाँ से जाने के बाद, ये नहीं कि वो सिलसिला मुनक़ते हो जाए, अपनी अपनी जगह पर जा करके अहले इल्म से राबता कायम करके उसका ये करने का एहतमाम करें। तो बहरहाल ये तो कुरान की तिलावत इनफिरादी आमाल के अंदर, ऐसे ही कुरान इनफिरादी आमाल के अंदर अज़कार, तो अज़कार के अंदर वैसे भी वो कल हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु वाली जिस रिवायत का मैंने हवाला दिया था उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अज़कार में 2 चीज़ों की ताकीद फरमाई है, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तिग़फार अस्तग़फिरुल्लाह, और 2 दुआओं का अहतमाम फरमाया, जन्नत का सवाल और जहन्नम से पना। हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्न सुलेमान जांजी रहमतुल्लाह अलैह वो जो है ऐलान किया करते थे मरकज़ निज़ामुद्दीन के अंदर के अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह असरुल्लाह जन्नत व औज़ु बिल्लाहि मिनन्नार, ये आदमी पढ़ लेगा तो गोया इसके अंदर 4 चीज़ें खुद ब खुद आ जाएगी। गोया आदमी रमज़ान के अंदर चलते फिरते इसका भी अहतमाम करें, और ये जो कलमा तय्यबा है मैं ये लाया था सुनाने के लिए लेकिन वक्त अब ये हमारा पूरा हो रहा, कल सुनाएंगे इंशाल्लाह। कलमा तय्यबा के मुतालिक तजर्बा बताया गया है कि 70,000 मरतबा अगर वो पढ़ा जाता है तो वो मगफिरत का जरिया हो जाता है, कल इंशाल्लाह वो चीज़ फजाइल जिक्र में से आपको सुनाऊंगा। तो ये कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह, बार लोग पूछते हैं कि ये 70,000 मरतबा पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह पूरा, नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह ही, बस ला इलाहा इल्लल्लाह ही की ये फजीलत है। अब ये है बुजुर्गों ने फरमाया है कि उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते पढ़ते 10-15-20 मरतबा हो जावे तो मोहम्मद रसूलल्लाह भी साथ में मिला लेने का, वरना असल फजीलत जो ला इलाहा इल्लल्लाह की है 70,000 मरतबा पढ़ने की वो इसी की है। तो बहरहाल یہ چلتے پھرتے کلمہ طیبہ یہاں اللہ نے موقع دیا ہے, تسبیح رکھو. اور وہ آج کل تو وہ تسبیحیں آتی ہیں جو اس کی, تو وہ اس کے اندر گننا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو یہ سب پڑے ہوئے ذخیرے نصاب اپنے پاس کیا ہونے چاہیے, اللہ تعالیٰ نے کسی کو کمانے کا موقع دیا ہو تو وہ کمی کرتا نہیں, کما کر کے اپنے لیے جو ہے بینک میں اکاؤنٹ میں جمع کر ہی لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں موقع دیا ہے, چلتے پھرتے بھی آیا جب کتابی تعلیم ہو رہی ہے آپ بیٹھے ہیں تو اس وقت بھی کلمہ پڑھتے رہیے, استغفار پڑھتے رہیے. ویسے بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ بھائی اس موقع پر پڑھنا چاہیے. اس سلسلے میں ہمارے اکابر کے دو نظریے ہیں, بعض منع کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں. میرا نظریہ بھی وہی ہے ہمارے ان اکابر کے, بھائی آپ جو ہے دونوں کام کریں, جو ہے دل بیار دست بکار و دل بیار, ہاتھ اپنا کام کرے اور دل دوست کے اندر مشغول ہو. ہمارے بزرگوں کا مزاج تو ایسا ہی تھا کہ بھائی اپنے وقت کو جتنا بھی زیادہ وصول کر لے. میں سنایا کرتا ہوں حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا قدر بھی دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ سنایا کہ ہم باندہ حضرت باندوی رحمتہ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے گئے. جب وہاں پہنچے ہتوڑا تو پتہ چلا وہاں کوئی جو ہے تعمیر کا کام چل رہا ہے عمارت کا, وہاں حضرت ہیں. تو وہاں ہم گئے, شوق تھا, وہاں پہنچ گئے تو وہاں ریت کا ڈھیر تھا, اس پر حضرت بیٹھے ہوئے تعمیری کام کی نگرانی بھی کر رہے تھے اور دو بچے بھی وہاں بیٹھ کر حضرت کو قرآن سنا رہے تھے. حضرت نے کہا بھائی میں نے سوچا کہ خالی نگرانی کروں گا بیٹھے بیٹھے, تھی قرآن کان اپنا کام کرے گا, آنکھ اپنی اپنا کام کرے گی. تو بہرحال میرے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی کو اس نظریے سے اتفاق نہ ہو تو میں اس کو مجبور نہیں کرتا اس پر عمل کرنے کے لیے, لیکن بہرحال میں تو میرا اپنا عمل تو یہی ہے اور اپنے بعد بزرگوں کے واقعات جو سنے ہیں اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. تو بہرحال کتابی تعلیم کے دوران بھی آپ اپنی تصویر لا الہ الا اللہ اور حساب یہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ باقی بات کل کریں گے.